दोस्तों, हाल ही में फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने कहा है कि वो आयरन मैन फिल्म्स में जो जार्विस रोबोट है उसी की तर्ज पर एक रोबोट बनाने की कोशिश करेंगे। अब आयरन मैन फिल्मों में, जो कि मार्वल कॉमिक्स पर आधारित है, जार्विस जो मुख्य किरदार है, टोनी स्टार्क या आयरन मैन उनका बटलर है। लेकिन जरा सोचिए कि क्या आप अपने घर में ऐसा रोबोट चाहेंगे जो आपके घर के सारे काम करता हो, और शायद उससे आगे बढ़कर वो बुद्धिमान भी हो और उसमें भावनाएं भी हो और आप उससे संवाद भी कर पाए। क्या आप ऐसे रोबोट को अपने घर में रखना चाहेंगे, और क्या ऐसा रोबोट बनाना संभव भी है? इन्हीं सब विषयों के बारे में जानने के लिए हमने RMIT यूनिवर्सिटी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम कर रहे डॉक्टर नितिन यादव से बात की, और उनसे पहला प्रश्न ये पूछा कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है।
जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें दो शब्द हैं, एक आर्टिफिशियल, एक इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल है उसके हमारा मतलब है कोई भी नॉन जीवित चीज, जैसे मशीन हो गया या सॉफ्टवेयर हो गया, और इंटेलिजेंस से मतलब है जो कि जिसमें थोड़ी बहुत समझ हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझ सकते हो कि कोई भी नॉन जीवित चीज या कोई रोबोट हो गया या सॉफ्टवेयर हो गया जिसमें क्षमता हो समझदारी दिखाने की। तो बहुत लेमैन टर्म्स में इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कहेंगे। नाउ अब कौन सी चीज इंटेलिजेंस है या नहीं है, इसमें थोड़ी सब्जेक्टिविटी है। जो हिस्ट्री है, हिस्टोरिकली एलन ट्यूरिंग ने एक टेस्ट सजेस्ट करा था जिसको हम ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। उस टेस्ट के अंदर कोई भी, मान लो आप ह्यूमन ले लीजिए, और उस ह्यूमन को हम वो टेस्ट में सजेस्ट करते हैं कि अब दो चीजें से आप वार्तालाप करें, एक उसमें से मशीन है और एक उसमें से ह्यूमन है। जो आपका ह्यूमन इवैल्यूएटर है, अगर वो रिलायबली ना डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन सा मशीन है और कौन सा ह्यूमन है, तो उसमें हम कहते हैं कि मशीन मैंने ट्यूरिंग टेस्ट को पास करा है और वो मशीन इंटेलिजेंट है।
पर
इस टेस्ट को लेके कई प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अगर आप फिलोसफिकली देखें तो मशीन जो है वो डिसीव कर रही है दूसरे ह्यूमन को बिलीव करने में कि वो ह्यूमन है। तो अगर आप कोई बहुत ही मुश्किल सवाल पूछें तो, और जो कि आपको पता है कि कोई ह्यूमन ना जवाब दे पाए, तो मशीन को डिसीव करना पड़ेगा कि ये सवाल वो मशीन भी ना दे पाए। तो ये डिसेप्शन की तरीके से आप देख सकते हैं। पर अभी तक जो कई जो टेस्ट सजेस्ट किए हैं, इसको हम काफी इम्पोर्टेंस देते हैं कि अगर कोई मशीन डिसीव कर पाए ह्यूमन को कि वो मशीन नहीं ह्यूमन है, तो वो मशीन में इंटेलिजेंस है।
जी नितिन, पर क्या अभी तक ऐसी कोई मशीन बनी है जिसने ये टेस्ट पास किया है?
तो कई इसमें अगर आप रिसेंटली देखें तो IBM वॉटसन है, जिसको आप जो क्विज गेम शो है उसमें वो कई बार ह्यूमंस को उसने डिफीट करा है। पर इसमें मतलब मशीन्स को हम जब बनाते हैं तो एक स्पेसिफिक केस के लिए बनाते हैं, जैसे कि वॉटसन को हमने क्विज के लिए बनाया या डीप ब्लू को हमने चेस खेलने के लिए बनाया। अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं है जो कि जनरल इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट कर पाए। जैसे कि ह्यूमंस, जैसे मान लीजिए मेरे को कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, फ्रेंच या जर्मन, तो मेरे में वो क्षमता है कि मैं जाके नई लैंग्वेज ऑटोमेटिकली सीख पाऊँ। बट मशीन जो खुद को सिखा पाए, उस लेवल की इंटेलिजेंस अभी तक नहीं है।
जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की है, क्योंकि कई बार सुर्खियों में हम देखते हैं कि इस मशीन ने ये किया या इस तरह से, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो उसी तरह से डिज़ाइन की जाती हैं, और जो एक जनरल इंटेलिजेंस है वो एक अलग चीज़ होती है। ये बताइए नितिन जी कि अभी रिसर्च कहाँ तक पहुँचा है? क्या उस तरह की मशीन या उस तरह का रोबोट जल्द आ सकता है कि हमारे लाइफ टाइम में आ सकता है?
इसको कहना हाँ या ना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ब्रेक थ्रूज होते रहते हैं। जो करंट रिसर्च है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कई एरियाज हैं, जैसे प्लानिंग है, सर्च है, मशीन लर्निंग है। तो इन एरियाज, अपने एरियाज में काफ़ी रिसर्च है, बट हमको एक जनरल इंटेलिजेंस के लिए इन एरियाज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब वो इंटीग्रेशन मेरे हिसाब से उसको टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी। तो लाइफ टाइम में हो पाए ना हो पाए तो मुश्किल सवाल है, बट मेरे हिसाब से इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। प्लस इसमें काफी इश्यूज हैं, जैसे हमारे अंदर इंटेलिजेंस के साथ इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं। अब वो इमोशंस को कितने हद तक मशीन्स में इनकॉर्पोरेट कर पाएंगे वो थोड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। प्लस मॉरल और एथिकल इश्यूज हैं, डिफरेंशिएशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, उसको इनकॉर्पोरेट करना भी काफी मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है।
कुछ वैज्ञानिक है जो ये कहते हैं कि हमें इस पर उतना काम करना भी नहीं चाहिए, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उस स्तर पर ले नहीं जाना चाहिए जहाँ पर वो उतने इंटेलिजेंस हो जाए कि वो हमें ही उनसे खतरा संभवतः पैदा हो। तो इस डिबेट पर क्या अभी फिलहाल चल रहा है साइंटिफिक कम्युनिटी में?
मेरे हिसाब से इस डिबेट में देखो, टेक्नोलॉजी के प्लस और माइनस तो होता ही है, वो हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे कि ड्रोन्स, आपको पता है ड्रोन्स हम जैसे अफ्रीका में यूज करते हैं एनिमल पोचिंग को प्रिवेंट करने के लिए। अब वही टेक्नोलॉजी ड्रोन्स को हम वेपन्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसी भी टेक्नोलॉजी का फायदा नुकसान तो होता है, वो हमारे ऊपर है कि हम उसको किस हिसाब से यूज करना चाहते हैं। तो कहना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ है, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। हम वेपन्स को स्मार्ट बना सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली वॉर्स को में पार्टिसिपेट करें, और कहना कि बिल्कुल खतरनाक है वो भी मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी का फायदा नुकसान तो होता ही है।
जी, और मेरे ख्याल अगर वो स्थिति आती है तो सेफगार्ड्स भी फिर डाले जाएंगे।
हाँ, बट अगर आप हिस्ट्री देखें, ह्यूमन हिस्ट्री, तो कई जगह हम फियर और ग्रीड से काफी अफेक्टेड होते हैं। जैसे वेपन्स में काफी पैसा इन्वॉल्व है, तो अगर कुछ ग्रुप्स में सिर्फ अगर वो ग्रीड देखें तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है। आई मीन, वो सिचुएशंस डेंजरस हैं।
जी, तो मतलब आपको लगता है कि इसमें सतर्कता से आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब हमें ध्यान थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा ये जो फील्ड है इसको लेकर कि हम कितने आगे तक इसको ले जाते हैं।
मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी को कैसे हम यूज करते हैं उसमें हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, बाकी उसका फायदे काफी हैं इस टेक्नोलॉजी के।
जी, जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात सोचते हैं तो हमें हॉलीवुड फिल्में याद आती हैं, आई रोबोट या जार्विस जो है आयरन मैन में और इस तरह से। लेकिन उसके अलावा कि इस तरह के रोबोट्स जो ह्यूमन बीइंग्स के लिए हेल्पफुल हो, घर में काम काज करे, लेकिन क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों में भी क्या हो रहा है या हो सकता है, जैसे डीप स्पेस है या फिर मेडिसिन है, इन इनमें भी क्या रिसर्च चल रही है?
बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कई कई फील्ड्स में यूज है। जैसे मैंने बताया, ड्रोन्स हम इस्तेमाल करते हैं जैसे अफ्रीका में, जो कि काफी वास्ट एरिया है एनिमल पोचिंग को प्रिवेंट करने के लिए। डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन में, जहाँ करके अभी तक ह्यूमंस नहीं जा पाए हैं, वहाँ पे हम रोबोट्स भेजते हैं जो कि खुद नेविगेट करते हैं अननोन टेरेन्स को। प्लस फाइनेंस में कई यूजेस हैं आपके, मेडिसिन में रोबोट असिस्टेड सर्जरीज हैं, प्लस डॉक्टर्स के लिए डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स में एआई का यूज है। प्लस मैन्युफैक्चरिंग में, अगर आपका मान लीजिए काफी बड़ा वेयर हाउस है, उसमें आइटम्स को फेच करना, अरेंज करना, उसमें रोबोट्स का काफी यूज है। तो मेरे हिसाब से एआई का यूज कई जगह, कई डिफरेंट एरियाज में आजकल हो रहा है।
जी, और बस जाते जाते आखिरी सवाल आपसे नितिन, कि जिस तरह के रोबोट्स की कल्पना की जाती है, जैसे मार्क जकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक, उन्होंने भी कहा है कि वो जावेस टाइप का रोबोट बनाने की कोशिश करेंगे, आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई ऐसा रोबोट बन सकता है जिसमें मनुष्य की इंटेलिजेंस भी हो और हो सकता है कि भावनाएं भी हो, मतलब क्या ये एक वैज्ञानिक स्तर पर क्या ये संभव भी है?
अब जो मार्क जकरबर्ग ने कहा है, जैसे उनको होम ऑटोमेशन के लिए उनको करना है, होम ऑटोमेशन आजकल काफी एडवांस्ड है कि आपके घर में अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, लाइट्स है, एयर कंडीशनिंग है, फ्रिज है, तो कि उस उन सबको ऑटोमेटिकली कंट्रोल करना संभव है। अब जहां तक इमोशंस इन्वॉल्व हैं, वो मेरे हिसाब से उसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, बट ये जितनी चीजें हैं इसमें एक स्पेसिफिक टाइप का वर्क इन्वॉल्व है, इस मेरे हिसाब से ये चीज पॉसिबल है।
नितिन, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया आपका भी।